ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा को सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया। कांवड़ पंजीकृत समितियों को आर्थिक सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से दी जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाम को कम करने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कल से नई पार्किंग व्यवस्था लागू की जाएगी। दिल्ली सरकार ने राजधानी की सड़कों को सुगम और गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक दिन में 3,400 से अधिक गड्ढों को भरकर रिकॉर्ड कायम किया और दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 12 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं लवली निगम। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रा से संबंधित पंजीकृत समितियों को आर्थिक सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी और सभी अनुमतियां सिंगल विंडो सिस्टम से 72 घंटे में अनिवार्य रूप से जारी होंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। दिल्ली सरकार ने ऐसे आयोजनों को सहयोग और निगरानी के लिए मुख्यमंत्री धार्मिक उत्सव समिति के गठन का भी निर्णय लिया है। बैठक के बाद मीडिया के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने टेंट और सर्विस के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए लेकिन भक्तों तक सुविधाएं नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि सरकार 4 श्रेणियों में समितियों को सहायता राशि देगी जिसमें कम से कम 50,000 रुपए और अधिकतम 10,00,000 रुपए देगी।
हम लोगों ने तय किया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की सेवा में जुटती हैं, उन्हें अब हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे जो कि पूरा का पूरा संस्था को सीधा पैसा जाएगा जो हम सहायता राशि दिल्ली सरकार देगी।
इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने जानकारी दी कि कांवड़ यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार राजधानी में लगने वाली सभी कांवड़ शिविरों को मुफ्त बिजली प्रदान करेगी।
इस बार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सिंगल विंडो क्लियरेंस, जहां पर बिजली विभाग, सुरक्षा के लिए पुलिस, सब विभाग एक जगह बैठेंगे और हमने आगे बढ़ते हुए सभी शिव भक्तों की सुविधा के लिए दिल्ली में सभी कांवड़ शिविरों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है और अधिकतम 1200 यूनिट तक मिलेगी। मुफ्त बिजली के साथ साथ उनके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएंगे। ड्यूसिप साफ सुथरे स्वच्छ टॉयलेट देने का काम उनको करेगी और उन टॉयलेट पे स्वच्छता के लिए कर्मचारी भी नियुक्त किए जाएंगे।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में कल से नई पार्किंग व्यवस्था लागू की जा रही है। इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य स्टेशन पर जाम को कम करना, भीड़ को नियंत्रित करना और यात्रियों को छोड़ने तथा लाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। हमारे संवाददाता ने बताया कि रेलवे प्रशासन ने स्टेशनों पर लोगों को जाम से राहत पहुंचाने के लिए यह फैसला किया है।
रेलवे प्रशासन के अनुसार स्टेशन परिसर में यात्रियों को छोड़ने आने वाले वाहनों को पहले 8 मिनट तक पार्किंग मुफ्त मिलेगी, लेकिन यदि कोई वाहन 8 मिनट से अधिक रुकता है तो उसे शुल्क देना होगा। 8 से 15 मिनट के बीच 50 रुपए, 15 से 30 मिनट के बीच 200 रुपए और 30 मिनट से अधिक रुकने पर 500 रुपए तक का शुल्क लगेगा। प्रशासन ने बताया कि यात्रियों को लेने आने वाले वाहन सीधे स्टेशन के सामने नहीं रुक सकेंगे और ऐसे वाहनों को सामान्य या वीआईपी पार्किंग में खड़ा करना होगा, जहां उन्हें निर्धारित शुल्क देना होगा। इससे स्टेशन के हर यातायात को कम करने में मदद मिलेगी। यह नियम व्यावसायिक वाहनों जैसे टैक्सी और कैब पर भी लागू होगा। प्रशासन ने बताया कि यह नई पार्किंग व्यवस्था मुख्य रूप से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर लागू होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान।
दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेनों में खोई वस्तुओं को यात्रियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा गाजियाबाद स्टेशन पर खोया पाया केंद्र बनाया गया है। इस केंद्र की मदद से यात्रियों की 160 से अधिक मूल्यवान वस्तुएं वापस लौटाई गई हैं। इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए यात्री नमो भारत कनेक्ट ऐप में खोया पाया केंद्र के विकल्प में नमो भारत स्टाफ को मिली वस्तुओं की सूची में खोए हुए सामान की जानकारी हासिल कर सकते हैं। अपनी वस्तु को पहचान करने के बाद यात्री गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन में बने केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। सामान लौटाने के लिए निर्धारित जांच के बाद उनका सामान उन्हें वापस मिल सकता है। दिल्ली सरकार ने राजधानी की सड़कों को सुरक्षित, सुगम और गड्ढा मुक्त बनाने की दिशा में आज लगभग 1400 किलोमीटर सड़कों पर 3400 से अधिक गड्ढों को भरकर रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि अब तक 50% से भी अधिक गड्ढे भरे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता है कि राजधानी को अच्छी सड़कें मिलें।
हमारा कमिटमेंट है दिल्ली के लोगों को अच्छी सड़क देने का, क्योंकि अभी मॉनसून कभी भी आ सकता है, इसलिए पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर सारे इंजीनियर्स के साथ में, स्टाफ के साथ में, फुल फोर्स के साथ में हम आज एक ही दिन में 3400 गड्ढे भरने का हमने बीड़ा उठाया है, 50% से ज्यादा गड्ढे भर लिए हैं।
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का दौरा किया और नालों की सफाई का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि इस इलाके में बरसाती नाले की सफाई युद्ध स्तर पर की जा रही है और सिल्ट हटाने का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नालों की सफाई के लिए केवल सुपर सकर मशीन और आधुनिक उपकरणों का ही इस्तेमाल किया जाए। इस दौरान श्री सिरसा ने दिल्ली सरकार द्वारा एक दिन में 3400 गड्ढे भरने के काम की प्रशंसा की।
इन खड्डों को भरने का काम दिल्ली में एक दिन में 3400 जगह पर इस तरह के खड्डे भरे जा रहे हैं, तो मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय रेखा गुप्ता जी का, हमारे मंत्री प्रवेश वर्मा जी का और दिल्ली के लोगों का जिन्होंने मौका दिया। और अगर आपने दिया तो देखिए इस तरह से दिल्ली बदल रही है, ये दिल्ली को बदलने का काम माननीय रेखा जी कर रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने ये साबित कर दिया है कि देश के लोगों का खून बहाने वाले आतंकवादियों के लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया ने हाल ही में भारत की ताकत देखी है, क्योंकि इस ऑपरेशन ने वैश्विक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ देश की दृढ़ और अडिग नीति को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। श्री मोदी ने यह बात नई दिल्ली में आयोजित भारत की दो महान आध्यात्मिक और नैतिक हस्तियों श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह के दौरान कही। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आज का भारत केवल राष्ट्रीय हित के लिए ही निर्णय लेता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सैन्य जरूरतों के लिए विदेशों पर भारत की निर्भरता लगातार कम हो रही है।
हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नारायण गुरु के आदर्श पूरी मानवता की निधि है। उन्होंने कहा कि एक सदी पहले शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच हुई ऐतिहासिक बातचीत ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी और विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा को प्रेरित करना जारी रखा।
आज समाज का हर वर्ग, हर तबका एक आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत के सपने को उसमें अपना योगदान दे रहा है। स्वच्छ भारत मिशन, पर्यावरण से जुड़े अभियान, अमृत सरोवर का निर्माण, मिलेट्स को लेकर जागरूकता जैसे अभियान, हम जन भागीदारी की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। 140 करोड़ देशवासियों की ताकत से आगे बढ़ रहे हैं।
संविधान हत्या दिवस कल मनाया जाएगा। यह दिवस 25 जून 1975 को संविधान को कुचलने की घटनाओं का स्मरण कराता है। इस दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने आपातकाल के कारण अत्याचारों का सामना किया था। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में कानून और न्याय मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि 50 वर्ष पहले इस देश में लोकतंत्र की हत्या की गई थी और हमें उन काले दिनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कल होने वाले संविधान हत्या दिवस के अवसर पर दिल्ली में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
50 साल पहले इस देश में लोकतंत्र की हत्या की गई थी और उन काले दिनों को कभी भी हम भूल ना जाएं, विस्मरण ना हो जाए, उसके लिए संविधान हत्या दिवस भारत की संसद ने ये निर्धारित किया है और एक साल तक इस प्रकार के कार्यक्रम चलेंगे। कल दिल्ली में भी ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं और सेंट्रल पार्क में श्री खट्टर जी और मुख्यमंत्री महोदया सब मिलकर एक प्रदर्शनी का भी शुरुआत करेंगे दिल्ली के सेंट्रल पार्क में।
गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में राजधानी में कल एक यात्रा निकाली जाएगी जिसका उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक अधिकारों और आपातकाल से मिली सीख के बारे में जागरूकता फैलाना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आज दिल्ली सचिवालय में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बस क्यू शेल्टर के उन्नयन के लिए एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में डॉक्टर पंकज ने अधिकारियों को बस क्यू शेल्टरों को आधुनिक और विश्व स्तरीय बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राजधानी में बस क्यू शेल्टरों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए बेंगलुरु, नवी मुंबई समेत सिंगापुर, लंदन से लेकर चीन तक शहरों में बनके बस क्यू शेल्टर्स के डिजाइन का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित बस क्यू शेल्टर्स के डिजाइन में एलईडी डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे, जिसमें बसों के रूट की जानकारी के साथ बसों के नंबर डिस्प्ले होंगे। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में भारत की डेटा अनिवार्यता गुणवत्ता की प्राथमिकता शीर्षक वाली अपनी त्रैमासिक अंतर्दृष्टि श्रृंखला का तीसरा संस्करण जारी किया। रिपोर्ट में डिजिटल शासन को सुदृढ़ बनाने, सार्वजनिक विश्वास पैदा करने और कुशल सेवा वितरण के लिए डेटा गुणवत्ता पर जोर दिया गया है। इसमें खराब गुणवत्ता वाले डेटा से उत्पन्न चुनौतियों की जांच की गई है और इससे निपटने के आसान व्यवहारिक तरीके बताए गए हैं। इस दौरान नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग और नीति आयोग में विशिष्ट फेलो देवजनी घोष ने भारत में डेटा प्रबंधन को और मजबूत बनाने के तरीकों पर विचार साझा किए। दिल्ली पुलिस ने आज सदर बाजार इलाके से 12 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जो अवैध रूप से इस क्षेत्र में रह रहे थे। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 20 अवैध बांग्लादेशियों के पहचान कर उन्हें डिपोर्टेशन सेंटर भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि ये लोग अलग अलग समय पर बांग्लादेश से सीमा पार कर भारत आए थे और फिर वहां से दिल्ली पहुंचे और विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने का अभियान तेजी से जारी है। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में आज बादल छाए रहे, लेकिन लोगों को उमस का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने, हवाएं चलने और हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। इस बीच मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अगले 2 दिन में मॉनसून पहुंचने और मौसम के बेहतर होने की संभावना व्यक्त की है। आकाशवाणी समाचार को ये जानकारी देते हुए मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने बताया कि अगले 36 घंटे में मॉनसून दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में पहुंच जाएगा।
मानसून का जो लाइन है वो अभी पारमेट लेकर के जोधपुर, जयपुर, आगरा, रामपुर एंड देन बिजनौर, कर्नल एंड अलवारा, और ये कंडीशन फेवरेबल है जो बाकी पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा और कुछ मोर पार्ट राजस्थान और हमारा जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी कवर करेगा। 36 आवर्स में बादल बना हुआ है और विंड पैटर्न काफी फेवरेबल है राजधानी के लिए और 36 आवर में मानसून राजधानी में प्रवेश कर सकता है।
नागर विमानन महानिदेशालय ने दिल्ली और मुंबई सहित प्रमुख हवाई अड्डों का समग्र निरीक्षण किया है। इसमें देश के विमानन तंत्र में कई खामियां पाई गई। महानिदेशालय में संयुक्त महानिदेशक के नेतृत्व में 2 दलों ने प्रमुख हवाई अड्डों पर रात और तड़के निरीक्षण किया। महानिदेशालय ने पाया कि विमान प्रणाली द्वारा बताई गई त्रुटि संबंधी रिपोर्टों को तकनीकी लॉगबुक में दर्ज नहीं पाया गया। कई लाइफ जैकेट अपनी निर्धारित सीटों के नीचे सही ढंग से नहीं थी। साथ ही एक हवाई अड्डे पर रनवे की सेंट्रल लाइन मार्किंग भी धुंधली थी। इन सभी खामियों के बारे में संबंधित संचालकों को बता दिया गया है ताकि वे 7 दिन के भीतर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई कर सकें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कहा है कि अग्रिम दावों के लिए स्वतः निपटान राशि की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का फैसला किया गया है। ये राशि लाभार्थियों को 72 घंटे के अंदर ही प्रदान कर दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा को सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया। कांवड़ पंजीकृत समितियों को आर्थिक सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से दी जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाम को कम करने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कल से नई पार्किंग व्यवस्था लागू की जाएगी। दिल्ली सरकार ने राजधानी की सड़कों को सुगम और गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 1 दिन में 3,400 से अधिक गड्ढों को भरकर नया रिकॉर्ड कायम किया और दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेश के 12 नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।